ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार तथा ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा।
100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनटीपीसी के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उसे वर्तमान दिशा निर्देशों से छूट देने को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि अब एनटीपीसी अपनी सहयोगी इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश कर सकेगी।
एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में, एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, अभी इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है।
श्री वैष्णव ने कहा कि समिति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों पर लागू वर्तमान निवेश दिशा निर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसीआईएल को विशेष छूट की भी मंजूरी दी है।
नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक।
श्री वैष्णव ने बताया कि भारत ने हरित ऊर्जा क्षमता में 50% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना करता है जिनके अथक प्रयासों से ये उपलब्धि संभव हो पाई है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को शामिल करते हुए 20 नई बटालियन बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। शुरुआत में सीआरपीएफ ने 35 बटालियनों के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रालय ने तत्काल उपाय के तौर पर 20 बटालियनों को मंजूरी दे दी है। भारत ने अपने नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। ईरान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये परामर्श जारी किया गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान यात्रा से पहले स्थिति पर नजर रखने और भारतीय प्राधिकरणों से जारी परामर्श पर ध्यान देने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अमेरिकी कंपनियों को पूर्ण पहुंच के बदले इंडोनेशियाई वस्तुओं पर प्रस्तावित शुल्क घटाकर 19% कर दिया गया। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 63 अंक बढ़त के साथ 82,634 पर बंद हुआ। निफ्टी 16 अंक बढ़कर 25,212 पर बंद हुआ। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहले ही दौर में हार गईं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।